أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 196، آیت نمبر 47 سے 88، سورة القصص. لیسن نمبر 196، آیت نمبر 47 to 88، سورة القصص. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 47 سے. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب کبھی ان کو پہنچے کوئی مصیبت ان کے اعمال کے باعث جو انہوں نے کیے ہیں تو وہ یہ نہ کہنے لگے کہ ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے. اس ایک آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے. لفظ ہے لولا. لولا عربی زبان میں کلمہ حرص ہوتا ہے، ابھارنے اور خبردار کرنے کے لیے، کسی کو رغبت دلانے کے لیے. پیچھے بھی یہ گزر چکا ہے لفظ. مراد کیا ہے کہ جب بھی ان کی طرف کوئی مصیبت ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی تو کہتے کہ اگر کوئی رسول آتا ہمیں ڈراتا تو ہم سمجھ جاتے. پیچھے ہم دیکھ چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 2000 سال تک عرب کی سرزمین میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. حضرت اسماعیل اور حضرت شعیب کے ساتھ تعلق تھا، لیکن بیچ میں اتنا جب اندھیرا ہوا تو بالکل بھی اندھیرے کے اندھیرے چھا گئے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مکہ والوں کی اس خواہش اور حسرت کا تذکرہ فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا کرتے تھے. آہیں بھر بھر کے کہا کرتے تھے، کاش کوئی ہمیں بھی بتانے آئے، کوئی رسول آئے. ہم سنتے ہیں یہود اور نصارہ کے پاس اتنے رسول آئے، ملک شام میں آئے، ادھر ہیں، مکہ میں کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ان تمنا اور خواہشوں پر آزمائش کے طور پر اپنا رسول دیا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی. ہدایت لینے کی بجائے عذر پیش کرتے رہے، ماننے کی بجائے منوانے کے زد پہ تھے، اور کچھ اس قسم کے حالات بنا لیے گئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کر رہے تھے، جس کا تذکرہ ہم نے پچھلی 3 آیات میں دیکھا کہ کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر نہ بھی یہ نبی آتا تو تم نے کل قیامت کے دن یہ دعویٰ جو کرنا تھا یا کلیم کرنا تھا کہ لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں کوئی رسول آیا ہماری طرف، آ جاتا تو کیا کرتے، فنت تبیا آیاتی کا، ہم تیری آیتیں مانتے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ جب بھی کہیں کوئی رسول آ جاتا ہے تو لوگ تو فوراً اس کی بات پہ چل کے اللہ کے دین کو اور اللہ کی آیات کو ماننے لگتے ہیں. حالانکہ ہم پچھلے انبیاء کی کہانیوں میں بار بار پڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ وہ دعویٰ ہے جس کی کبھی دلیل نہیں ملی. دعوے کرنے والے عموماً عمل کے وقت پیچھے ہی دیکھے جاتے ہیں. یہ تو ان کی آزمائش تھی نا کہ ان کی تمناؤں پہ رسول آ گئے، ان کو موقع مل گیا، ہدایت مل گئی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں ہو جائیں گے. لیکن ایکچولی پریکٹیکلی کیا ہوا، آیت 48، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، بس جب آ گیا ہمارے پاس سے حق ان کے پاس. یہاں دیکھیے الحق کس کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات الحق ہے، اللہ کا دین حق ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا، اللہ کا نبی آیا، دین آیا. قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کتنی تھرڈ کلاس سوچ ہے، کہنے لگے اچھا آ گیا رسول، نہیں یہ تو کوئی موسیٰ جیسا آتا، تقابل کرنے لگتے ہیں. نہیں وہ آتا تو ٹھیک تھا، وہاں سے آتا تو ٹھیک تھا، اس مسلک کا آتا تو ٹھیک تھا، اس گروہ کا، اس ادارے کا آتا تو ٹھیک تھا. یہ لوگوں کی وہ عادت ہوتی ہے جو اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ ان کو ہدایت کی طلب نہیں ہے، صرف نہ ماننے کے 100 بہانے والی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کے نام سے وہ آگاہ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے تذکرے بھی سن چکے تھے، تو کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو وہ رسول چاہیے تھا جو موسیٰ کی طرح ید بیضہ اور عصا والی کوئی نشانی دکھاتا، کوئی معجزہ دکھاتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یکفرو بما اوتی موسیٰ من قبل، ان مکہ والوں سے پوچھو، عقل کرو، تم تو کہہ رہے ہو کہ جو موسیٰ کو دیا گیا ہے اگر ویسی چیزیں یہ رسول بھی دیا جائے تو ہم مان جائیں گے. یہ بتاؤ جب موسیٰ آئے تھے تو ان کو قوم نے مان لیا تھا؟ उन्होंने वो यदे बैजा और मुझसे को देखकर क्या मूसा पर ईमान लाए थे वो लोग? हरगिज नहीं। अवलम यकफरू, क्या उन्होंने कुफर नहीं किया? किन्होंने नहीं किया भला? बनी इसराइल, यानी अल्लाह ताला मक्का वालों को समझा रहे हैं कि देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें ना मांगो, मूसा भी आ जाता और इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यदे बैजा और असा जैसे मोजजात भी आ जाते, करना तुमने वही था जो आज किया है। बंदे की असल नहीं बदलती, औकात नहीं बदलती। कहते हैं गर्मी आएगी तो ये करेंगे, गर्मी भी आ जाती है आके चली जाती है। नहीं अब सर्दी आएगी तो ये करेंगे, सर्दी आई आके चली गई। जिसको नहीं करना उसको नहीं करना। कहा कि जब मूसा ने बात की जिसकी बात करके तुम आज इस नबी की बात से पीछे हो रहे हो, तो याद रखो कि उनके बारे में लोगों ने क्या कहा, कालु सहरान तजाहरा, कहने लगे ये तो दो जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ देखिए लफ्ज़ सहरान आया, सहरुन का तस्निया है। ये कहने की बजाय ये दो जादूगर हैं, साहरान कहने की बजाय यहाँ सहरान दो जादू क्यों आए? ये मुबालगा है, वही बात जो पहले भी कई दफ़ा हुई कि किसी को बहादुर कहने की बजाय किसी को शेर कह देना। यानी ये नहीं कहा कि ये दो जादूगर हैं, बल्कि ये तो हैं ही जादू का पलंदा। जिस तरह हम किसी बहुत झूठ बोलने वाले को ये नहीं कहते कि ये झूठ है, हम कहते हैं ये तो झूठ का पलंदा है, तो बात वाजे हो जाती है। उसी तरह से उनके बारे में तो ये कहा कि ये दोनों जादूगर हैं और तजाहरा एक दूसरे की मदद करते हैं। वकालू इन्ना बिकुल्ली काफिरून, और उन्होंने कहा कि हम तो इन तमाम का इनकार करते हैं। यानी उस कौम ने नहीं माना जिनके पास मूसा आए, जिनके पास इतनी प्यारी बातें आईं। कितनी बातें करते हो तुम उनके बारे में, वो भी नहीं माने। अगर तुम्हारे पास आते तो क्या तुम मान जाते? असल बात है कि तुम्हारे पास वो आँख ही नहीं है जिसको रोशनी की तलब है। जब अंदर की रोशनी बुझ जाती है ना, तो इंसान इसी किस्म की बातें करते हुए देखता है। आप देखिए कि अगर बिलफर्ज किसी जगह नबी ना भी आए या अल्लाह ताला ना भेजता, तब भी इंसान की फितरत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुरी हैं। हर एक को पता है कि शराब पीना बुरा है, झूठ बोलना बुरा है, धोखा बुरा है, बेहयाई बुरी है, लेकिन क्या लोग अपनी फितरत की पुकार को सुनते? अल्लाह ताला चाहता तो लोगों को सिर्फ उनकी फितरत की वजह से पकड़ लेता कि बताओ तुम्हारे अंदर से टोक आती थी गुनाह करते हुए, क्यों नहीं रुके? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि अल्लाह ताला हुज्जत तमाम करता है। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी बनने से पहले भी फितरत पर थे। अल्लाह के नबी के दौर में कुछ लोग मवाहिद थे जिन्होंने कभी बुतों की न्याज नहीं खाई थी, जिन्होंने गैर अल्लाह के ज़बीहे नहीं खाए थे। अंदर अल्लाह ताला ने ज़मीर नाम की एक रोशनी हर एक के अंदर रखी हुई है, तो रसूल का भेजना तो एक मजीद इनाम है। ये तो एक और सोने पे सुहागा वाली बात है, नूर अला नूर है, वरना पकड़ तो इसी पे हो जानी थी कि बताओ किया क्यों नहीं। सूरत निसा आयत 165 और सूरत अलनाम आयत 156 में हम यही मजमून पढ़ चुके हैं कि जिनको तलब नहीं होती वो इसी किस्म की बातें कर कर के अपने आप को सच्चा कर लेते हैं। का नहीं, ये नहीं हो सकता। आप सोचिए कि यहाँ जिनका हजरत मूसा और हारून को सहरानी तजाहरा कहना, इस पे भी थोड़ी सी बात अगर हम करके देखें कि हज़रत मूसा के दौर में तकरीबन 70,000 जादूगर मुसलमान हो गए थे आपके असा और यदे बैजा को देखने के बाद, लेकिन ना फिरौन माना ना उस वाले माने। क्या पता चला कि जिसको नहीं मानना ना वो आंखों देख के भी नहीं मानेगा, और जादूगर जो उस फन के माहिर थे वो लोग इस बात से मान गए क्योंकि वो साहिब इल्म थे। तो इल्म वाले को बहरहाल कुछ ना कुछ कदर होती है, चाहे बातिल इल्म हो लेकिन वो उसको इल्म मान लेता है। बाज़ ने ये भी कहा कि यहाँ सहरान तज़ाहरा से मुराद तौरात और कुरान है। बाज़ कहते हैं कि यहाँ दो जादू यानी कुरान और तौरात है। मक्का वालों को बताया गया कि देखो जैसे आज कुरान का जादू चलता है ना दिलों पे, इसी तरह कल तौरात का भी चलता था, लेकिन लोग नहीं मानते। तो मर्द नाज़ा पे कलाम में दिल फरेब बे असर वाली कैफियत है कि उनको अच्छी बात नहीं समझ आती। फिर अल्लाह ताला आगे इनको फरमाते हैं, कुल आप फरमाइए, फातु भी किताब मिन इंदिल्लाही, आप ही लेके आ जाओ कोई किताब अल्लाह के पास से, हुवा अहदा मिनहुमा, जो ज्यादा हिदायत बख्शो इन दोनों से। कौन दोनों? कुरान और तौरात से। तुम्हें कुरान पसंद नहीं आया, कल उनको तौरात पसंद नहीं आई थी, तुम्हें ये कुरान अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा करो कि तुम खुद ही ये किताब ले आओ। हुवा अहदा मिनहुमा, जो ज्यादा हिदायत देने वाला हो इन दोनों किताबों से। अत्तबे हु, मैं तो इसकी पैरवी करूंगा, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। اللہ اپنے نبی کے ذریعے بہت بڑا چیلنج دے رہے ہیں مکہ والوں کو کہ دیکھو تم نہیں مان رہے نا، تمہیں نہیں پسند میرا قرآن، تمہیں میرا طریقہ نہیں پسند، تمہیں یہ قرآن اچھا نہیں لگتا، اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی، تو تم ایسا کرو کہ یہ قرآن تم لے آؤ. کیا آج کے دور کے لوگوں کے لیے یہ ایک چیلنج نہیں ہے؟ جو ہر ممکن سہولت موجود ہونے اور ہر ممکن اسباب کی موجودگی کے باوجود آج کے دور میں پھر اسلام سے پیچھے ہیں، پھر قرآن سے پیچھے ہیں، پھر دین سے پیچھے ہیں، کیوں؟ ان کو کس کی ضرورت ہے؟ اب دیکھیں سورہ مرسلات کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیا اس بات کے بعد اب کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں لینا چاہتا وہ کہاں سے ہدایت لے گا؟ کون سا فکشن اس کو ہدایت دے گا؟ کون سا ڈائجسٹ، کون سا ناول، کون سی کامیڈی، کون سا مواد اس کو ہدایت دے گا؟ آج بھی لوگ قرآن سے الرجک دکھتے ہیں، آج بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں قرآن نہیں ہم پڑھ سکتے، یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ خواہشات پہ بہت زیادہ چوٹ ڈالتا ہے اور یہ بڑی مشکل پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگوں کو ایک پلیوٹڈ قسم کا کلام چاہیے؟ یاد رکھیے ہر دور میں لوگوں کو جب بھی قرآن کی، دین کی، سچی کتاب کی دعوت دی گئی اور اس کی باتیں ان کی خواہشات کے راستے میں روڑا بنی تو لوگوں نے اس کتاب کو ہٹانا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں چاہتے، وہ بڑی سخت باتیں بتاتے ہیں، ان کا قرآن تو بڑا سخت ہے. ہاں ہاں بالکل، اس لیے کہ سچا جو ہے ہمارا بڑا نرم قرآن ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر بہت ساری چکنی باتیں ڈال دی ہیں، بہت بٹرنگ کر دی. دیکھیے قرآن ہر اس بندے کو بہت آسان لگے گا جو اس کو بالکل فطرت کے مطابق اور سنت کی روشنی میں پڑھے گا. وقت کی قید سے آزاد کرتے ہوئے، مشرق اور مغرب کی جہتوں سے آزاد کرتے ہوئے، 14ویں صدی اور پہلی صدی کے فرق سے انداز کرتے ہوئے پیور فارم میں رکھے. مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی چیز اپنی پیور فارم میں کیسی ہوتی ہے، اس کی ایک نیچرل فارم ہوتی ہے نا. مثال ہے کہ گندم کو لے لیں، جب گندم کو پیستے ہیں اس میں کچھ چھلکا بھی پس جاتا ہے اور باقی اس کے اندر کا آٹا بھی ہوتا ہے. اب وہ آٹا جب نیچرل فارم میں آپ کسی کو کھلائیں گے اس کا سٹمک بالکل اس کو قبول کرے گا، میدے سے اس کو طاقت ملے گی، جو اس کا فائبر ہے اس سے اس کے جسم کے اندر خوراک کی موومنٹ میں مدد ملے گی، اس کو تو وہ روٹی سخت نہیں لگے گی. اب ایک شخص جو مثال ہے کہ عادی ہو چکا ہے صرف اندر سے میدہ کھانے کا، یا جو سفید روٹی میدے کی کھاتے ہیں، آپ کبھی ان کو پیور روٹی کھلائیں جس کے اندر خشک بھی ہے یا جس کو آپ فائبر والا کہیں، تو اس کو وہ روٹی سخت لگتی ہے نا. اور اس کا اپوزٹ بھی، اگر کسی کو آپ صرف خشک نکال کے، اس کا چھلکا نکال کے، وہ جو ڈائٹ کے لیے بھی لوگ کھاتے ہیں فائبر والی روٹی، وہ کھلانی شروع کریں تو وہ میدے والی روٹی بھی نہیں کھا سکے گا. سب سے زیادہ نیچرل اس میں کون سی ڈائٹ ہوتی ہے؟ بیچ والا، میڈیم، آرگینک. جیسے گندم آئی اس کو دھو اور پیس کے کھلا دو. قرآن پاک کو آپ اس کی بالکل اصل فارم میں رکھیں گے نا تو یہ گندم کی وہ کیفیت ہے جس میں کچھ بھی نکالا نہیں گیا، کچھ نہیں ڈالا گیا. ہم جب قرآن پاک کو بہت ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں نا تو بالکل ایسے جیسے ہم میدے کی وائٹ بریڈ کھاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بریڈ کھاتے ہیں پاکستان میں جا کے ہماری بھوک نہیں ہٹتی. کیوں؟ کہ وہ منہ میں جائیں تو کھل جاتی ہے، نرم بہت ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں ہم یہاں آتے ہیں یہاں کی تو بریڈوں میں بڑی سوکھی لگتی ہے کیونکہ یہ بہت براؤن ہوتی ہے. دین کو کوشش کر کے آرگینک رکھیں، اور یہ رہ نہیں سکتا جب تک ہم اس کو وقت کی جہتوں سے پاک نہ کر لیں، حالات کے مطابق. آج کا لائف سٹائل چونکہ ایزی ہو گیا، لوگوں کی زندگی میں موومنٹ نہیں رہی. وہ کہتے ہیں نہیں آپ صرف براؤن روٹی کھاؤ پھر فائدہ ہوگا، کیونکہ حرکت نہیں ہوئی، جسم کے اندر کھانا جا کے رک جاتا ہے. جو کسان دن بھر کام کرتے ہیں وہ آٹا، روٹی، چاول جو مرضی کھا دیں ان کا ہضم ہو جاتا ہے. جب انسان کی زندگی فطرت کے مطابق ہوتی ہے نا، اس کو دین کا ہر مسئلہ ہضم ہو جاتا ہے. کبھی دین ہنساتا ہے، کبھی رلاتا ہے، اور واقعی کچھ باتیں دین کی مشکل لگتی ہیں تو کیا چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. کبھی سختی، کبھی نرمی. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بڑے ہونے تک کتنے مرحلے آتے ہیں. کبھی دانت نکلنے کا مرحلہ بچے کا دیکھے، کتنا روتا ہے، کتنی اذیت ہے ماں کے لیے اور بچے کے لیے، لیکن آئیں گے، صبر کرنا پڑے گا. بخار ہوگا، انجیکشن لگتے ہیں، بچے کو فیور ہوتا ہے، ہوگا. آپ چاہے کہ دین کو آپ اتنا نرم کر لیں کہ بس یہ ایک دانت بھی نہ لگائیں اور نکل جائے تو اسٹمک میں جا کے پھنس جائے گا. تو لہٰذا ان سے کہو پھر آپ لے آئیں، میرے پاس تو یہی تھا. بالکل آپ دیکھیے کہ جھنجھوڑنے والا انداز ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتہ بھی ہو پھر میں مان لوں گا اس کو. اتنا زبردست قسم کا چیلنج ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی اس قسم کی آیت نہیں گزری ہوگی کہ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اچھی نہیں، تم لے آؤ میں مان جاؤں گا. جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، अच्छा फिर मैं मान जाऊंगा, ला के दिखाओ मैं तुम्हारे आगे छोटा बन गया। तो मुराद जहाँ ये नहीं है कि आपने मान लेना था, मुराद ये कि ऐसा ला ही नहीं सकते थे। ये वही अंदाज है कि इन कुन तुम फी रही बेमिम्मा नज़लना अला अब्दीना फातु भी सूरत में मिसली ही, ले आओ एक किताब एक सूरत इस जैसी अगर तुम सच्चे हो। हाँ अगर ना लाओ फ़इल्लम यस्तजीबु लका, और अगर आपका ये चैलेंज आपकी ये दावत कबूल ना करें पेशकश कबूल ना करें फ़ालमन्नमा यत्तबेउन अहवाअहुम, तो फिर खूब जान लो ये सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। ये कोई कुरान को मानने ना मानने वाली बात नहीं है। आप हजारों मोजज़े इनके सामने पेश करें ये इस्लाम फिर भी नहीं लाएंगे, क्योंकि ख्वाहिशों के जो हरीस होते हैं उनके पास क्या होता है, सिर्फ ख्वाहिश। और वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु, और उससे ज्यादा गुमराह कौन है जो पैरवी करता है अपनी ख्वाहिश की बगैर हुदम मिन अल्लाह। कितनी जबरदस्त आयतें, मेरा तो दिल चाह रहा है सिर्फ इनका तर्जमा पढ़ा के आगे जाऊं, एक लफ्ज तफसीर करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला कितना वाज़ेह बयान कर रहे हैं कि जो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे अल्लाह की रहनुमाई के बगैर, तो सुन ले इन अल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। गोया के इस आयत से पता चला कि किसी भी मुआशरे में दो दीन साथ साथ चलते हैं, एक है किताब इलाही वाला दीन और एक है ख्वाहिश नफसानी की पैरवी का दीन। कल भी यही मसला था लोगों का, आज भी ये मसला था। पीछे हम पढ़ चुके सूरह हज में कि एक शख्स कभी एक बुत को निकालता उसको पूछ लेता, दिल भर जाता, थोड़े देर बाद दूसरे को निकाल लेता, तो आ गया बात कि ये शख्स अपनी ख्वाहिश को माबूद बनाए हुए। इसी तरह आज के दौर में आप देखिए कि लोग जो बुतों को पूछते हैं, जो बुत उनको अच्छा लगता है उसको मानने लगते हैं, कुछ पीरों को मानते हैं, जिस पीर पे ज़रा इतिकाद भरा उसको मानते हैं। जैसे कोई किसी डॉक्टर पे दिल बैठ जाता है ना, इस तरह लोगों का अपने पीरों पे दिल बैठ जाता है। जी ये मेरे पीर साहब हैं, ये हमारे बुजुर्ग होते हैं। क्या हर एक का बुजुर्ग फ़र्क होता है? हर एक चीज़ के पीछे आप देखेंगे तो अंदर ख्वाहिश परस्ती होगी, नफ्स परस्ती होगी। सूरह फुरकान आयत 43 में भी हम पढ़ चुके हैं, फराई तमन इतखज इलाहु हवाहु, क्या आपने नहीं देखा उस शख्स को कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया। और आप यहाँ देखिए कि जो आखिरी आयत का हिस्सा, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि इन्नल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, यहाँ ज़ालिमीन कौन है, किन ज़ालिमों को हिदायत नहीं मिलती? ख्वाहिशों के पुजारी, ख्वाहिशात के पैरोकारों को कभी भी हिदायत नहीं मिलती, क्योंकि उनको तो हिदायत बहुत बड़ी रुकावट लगती है अपनी ख्वाहिश के दौर में। अब देखिए कि जो बच्चा पैदा होता है ना, अमूमन बच्चा अपनी मर्जी रखता है, सोने में खाने में पीने में, होश ज़रा संभाली अपनी मर्जी बताना शुरू हो गया, ये खाना है वो नहीं खाना। अगर इसके अंदर से इस अर्ज को और इस हिस को कम ना किया जाए ना, तो वक्त के साथ अपनी बात मनवाने की हिस इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान के अंदर एक और इंसान बन चुका होता है जो बिल्कुल ढीठ होता है, स्टबन होता है, जो मैं कहूँगी वही करना है, जो मैं कहती हूँ वही करें। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को हिदायत से दूर रखता है। याद रखे कि हिदायत पाने के लिए अंदर के बुत को तोड़ना पड़ता है, यही जिहाद बिन नफ्स है। उसको मिलेगी हिदायत जो खुद लेना चाहेगा, और जो अपनी मर्जियों के मालिक होते हैं उनको हिदायत नहीं मिलती। आज के दौर के मुसलमानों का भी मामला जो है ना, वो ज़्यादा ख्वाहिश का ही मामला है। सबको सब कुछ पता है, ये बातें जो थी चलती आईं, हर एक को पता है इस्लाम की बेसिक्स। क्यों आज ये आवाज़ें उठती हैं? कई मसले जो मुत्तफिक थे, कई सदियों से कोई उस पर खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला, आज वो आवाज़ें क्यों उठती हैं कि सूद हलाल है? क्यों आज आवाज़ें उठती हैं कि पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं, शराब को हलाल कर लेते हैं, घर हलाल है, ये है वो है? ये ख्वाहिश की आवाज़ें हैं। पहले दौर में लोग इख्तलाफ करते थे इल्म की बुनियाद पर। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को फिर हिदायत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वलकद वस्सलना लहुमुल कौल, और हम मुसलसल भेजते रहे इनकी तरफ अपना कलाम, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वो नसीहत कबूल कर ले, ताकि वो नसीहत कबूल कर ले। यानी इनके इनकार की वजह से अल्लाह ताला ने हक का सिलसिला रोका नहीं है। हसबे हाल हसबे ज़रूरत आयात उतरती रहीं, बातें आती रहीं, ना मानते ये इनकी मर्ज़ी है। जैसे बारिश हो रही होती है, कोई उससे फ़ायदा उठाए कोई ना उठाए, अल्लाह ताला बारिश भेजता है। इसी तरह इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हर दौर में सिलसिला कायम रखा, मुनक़ते नहीं किया। हिदायत तो उसको ही मिलनी थी जो ज़िद्द और हठधर्मी और तासुबात से पाक दिल को लेकर आता, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, तो अल्लाह ताला ने हिदायत को जोड़े रखा। ये जो लफ्ज है ना वसलना, वसला से है, विसाल बीसी से मिलाना, रस्सी के मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़ना, इसको वसल कहते हैं। इस एक अमल की बहुत प्यारी बात है, हम सब के लिए इसमें होप भी है कि अच्छी बात कहना ना छोड़िए, चाहे आपके बच्चे माने ना माने, आपके घर वाले माने ना माने, हत्ता कि आपका अपना नफ्स माने ना माने। बाद वाले लोग कहते हैं आप हम अमल तो कर नहीं रहे, सुनते जा रहे हैं, छोड़ देते हैं सुनना। नहीं, बस सलना कहते रहें, खुद सुनाए। आप गुनाह करें फिर भी जाएं मस्जिदों में, गुनाह करें फिर भी आए कुरान की क्लासों में, गुनाह करें फिर भी दर सुने, क्योंकि तस्कीर बंदे को फिर अखीर तोड़ देती है। तस्कीर को भी वसलनल कौल कहते हैं ना, क्योंकि उसमें रिमाइंडर्स होते हैं, वसला यु वसिलु। आज देखिए ज़रा किसी को एक से दो बार आप बात करें, कहते हैं फिर वही बात कर दी, बार बार एक ही बात करती हो, तुम्हें और कोई बात नहीं आती। हाँ, इसलिए कि वसलना लहुमुल कौल, एक दफ़ा एक मूड होगा, दूसरी दफ़ा दूसरा मूड होगा, कहते रहे खूबसूरत तरीके से, अंदाज बदल बदल के बात करते रहे, अल्लाह ताला दिल खोलने पे आएगा, एक मिनट नहीं लगेगा और दिल खुल जाएंगे। और ऐसे वक्त में लोग फिर अल्लाह की मर्ज़ी की तरफ आए ना आए, ये उनकी मर्ज़ी, लेकिन बहरहाल इसके नतीजे में अल्लाह ताला के पास हुज्जत ज़रूर कायम हो जाएगी कि हमने इनको समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर उसके बाद फरमाया अल्लज़ीना आतैना हुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून। ओ मक्का वालो, ना मानो, तुम्हारा नहीं दिल चाहता ना, तुम ना मानो, आराम से बैठ जाओ। जिनको हमने अता फरमाई थी किताब नज़ूले कुरान से पहले, वो इस पर ईमान लाते हैं। कौन से लोग हैं ये? इशारा है इसमें अहले किताब के उन लोगों की तरफ कि जो इस्लाम के आने से पहले भी सही दीन पर थे और उनके दिल में तड़प थी, तलब थी, ख्वाहिश थी, और जूँ ही अल्लाह के नबी सल्लम आए या उनको पता चला तो ये फ़ौरन मुसलमान होकर इनके पास आ गए। अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे लोग, सूरत बकरा की आयत 121 में हम लोग पढ़ चुके, लैसु सवाम, बराबर नहीं है सारे। फिर इसी तरह सूरत आल इमरान 199 में और सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 107 और 108 में यही बात पढ़ी कि वो अहले किताब जिनके दिल में तासुब नहीं था, दीनदार थे लेकिन मुतसब नहीं थे। याद रखिए ये जुमला, जो दीनदार हो और मुतसब ना हो वो हर नए पैगाम को कबूल कर लेगा, जो उसको अपने से ज़्यादा एडवांस दिखेगा वो फ़ायदा उठा लेगा, वो कहेगा कि मुझे कुरान आता तो था लेकिन थोड़ा आता था, कोई बात नहीं, अब मौका मिल गया, मैं सीख लेता हूँ। ये बनी इसराइली वही लोग हैं कि जिनके दिल में इस तरह से सच्चाई थी, लिहाजा वो आ गए। लेकिन जो स्टबन होते हैं ना, जो अपनी बात को, अपने गिरोह को, अपने मसलक को, अपने मनसब को बचाते रहते हैं, फिर वो सुन के भी नहीं मानते, वो तावीलात में आने लगते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत उन लोगों के बारे में है जो निजाशी बादशाह के दरबारियों में से 40 लोग मदीना भेजे गए थे। पीछे सुन चुके हैं ना कि जब निजाशी के पास लश्कर गया, फिर उसके दिल में ईमान आया, फिर गाहे बगाहे निजाशी कुछ लोगों को का मदीना भेजा करता था। तो जब मदीना में इसने भेजा 40 लोगों को, नबी सल्लम उस वक़्त गज़वे खैबर में मशगूल थे, खैबर की जंग हो रही थी, ये लोग भी जिहाद में शरीक हो गए। बास को ज़ख्म भी लगे और कोई इनमें कत्ल नहीं भी हुआ। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम के सहाबा की जब मुआशी तंगी का हाल देखा कि पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी, हमारे पास माल बहुत है, आप ऐसा करें कि हमसे माल ले ले और हम अपने मुल्क में जाकर आपके सहाबा के लिए कुछ मदद के लिए चीज़ें भेजेंगे, अगर आप इजाज़त दें तो हम ये करने को तैयार हैं। अल्लाह ताला ने उस पर रियायत उतारी कि देखो ना मानो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारे नसीब, वो हैं जो मानने वाले हैं कि जब वो इस बात को पहले से मानते हैं। इससे क्या बात पता चलती है कि दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हिदायत मिलने के बाद हमारा दिल तासुब से भी खाली रहे। जब दिल में तासुब आता है ना तो बंदा अपना दुश्मन खुद बन जाता है। और आप देखिए कि करीब वाले नहीं माने, दूर वाले मान गए। अल्लाह ताला यहाँ मक्का वालों के जिस तरह कहना चाहिए कि होश सीधे कर रहे हैं कि तुम्हें नहीं समझ, तुम्हें अक्ल नहीं है। वो लोग जो ईमान ला रहे हैं, जो नजाशी हफ्शा, कहाँ से उठ के आए वो लोग, और तुम अपने घर आई हुई नेमत को ठुकरा रहे हो। वो दूर दूर के लोग इसकी खबर सुनकर आ रहे हैं, इसकी कदर पहचान कर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और तुम नहीं मान रहे, तुम्हें नहीं समझ आती कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसके बारे में वाक्या भी आता है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ आपको। हिजरत हबशा के बाद जब नबी सल्लम की बेसत और दावत की खबरें हबशा के मुल्क में फैली, तो वहाँ से 20 के करीब ईसाइयों का एक वफद तहकीक के हाल के लिए, यानी तहकीक करेंगे, जाके देखें हो क्या रहा है। तहकीक के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद हराम में मिला। कुरैश के बहुत से लोग ये माजरा देख कर खड़े हो गए। वफ्द के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए, जिनका आपने जवाब दिया। फिर आपने इनको इस्लाम की तरफ दावत दी और कुरान मजीद की आयात इनके सामने पढ़ी। कुरान सुनकर इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्होंने इसके कलाम इलाही होने की तस्दीक की और अल्लाह के नबी पर ईमान ले आए। जब महफिल बर्खास्त हुई तो अबू बकर और उसके चंद साथियों में इन लोगों को रास्ते में पकड़ लिया। इमेजिन करें, ये ईमान कबूल करके जा रहे थे, अबू जाहल और साथियों ने पकड़ लिया। ये जब नज़र रखते हैं ना कि कौन ईमान ला रहा है और किसके दिल में हिदायत आ गई है, वापस आते हुए उनको पकड़ लिया और इन्हें सख्त मलामत की। कहा, बड़े नामुराद हो तुम लोग, तुम्हारे हम मजहब लोगों ने तुमको इसलिए भेजा था कि तुम इस शख्स के हालात की तहकीक करके आओ और उन्हें ठीक ठीक खबर दो, मगर तुम अभी इसके पास बैठे ही थे कि अपना दीन छोड़कर इस पर ईमान ले आए। तुमसे ज़्यादा अहमक गिरोह तो कभी हमारी नज़र में नहीं गुजरा। ये अबू जहल उनको आर दिला रहा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, सलाम है भाइयों तुमको, हम तुम्हारे साथ जहालतबाजी नहीं कर सकते, हमें हमारे तरीके पर चलने दो और तुम अपने तरीके पर चलते रहो। हम अपने आप को जानबूझकर भलाई से महरूम नहीं रख सकते। ये सीरत इब्ने हिशाम की और बिदाया और नहाया की रिवायत है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि हिदायत पे आने वालों के लिए लोग कितने ज़्यादा हरीस होते हैं कि किसी तरह से उनको उस चीज़ से हटा दे जो चीज़ उनके पास आ गई। इसी का तस्करा बगली आयतों में भी आ रहा है।